यरमिया अध्याय 11। यरमिया के अध्ययन को जारी रखते हुए अध्याय 11 निकाले। अध्याय 11 इस पुस्तक का एक नया भाग आरंभ करता है, परंतु ये वास्तव में विभाजित भाग नहीं है, वरन ये एक नया संदेश है। यरमिया के पुस्तक में परमेश्वर के दिए अनेक संदेश हैं। अध्याय 10 के साथ हमने परमेश्वर के उस संदेश को समाप्त किया जो परमेश्वर ने यरमिया को मंदिर के फाटकों पर खड़े होकर देने को कहा था। अब उसे परमेश्वर ने वो संदेश दिया है जो परमेश्वर के साथ बांधी वाचा को तोड़ने के विरुद्ध परमेश्वर ने यरमिया के मुख से उद्घोषित किया। आपको ध्यान होगा कि जब परमेश्वर इस्राएल के वंशजों को प्रतिज्ञा के देश में लाया था, तब एक शर्त थी कि वे परमेश्वर और परमेश्वर के आज्ञाओं को मानेंगे। प्रतिज्ञा के देश में आते ही उनको पहली आज्ञा दी गई कि वे उस देश पर अधिकार करें। शेकेम घाटी में दो पर्वत थे, एक था गेरेजिम, दूसरा था इबाल। उनके गोत्रों के कुछ लोगों को गेरेजिम पर्वत पर खड़ा होना था, जबकि अन्यों को पर्वत इबाल पर। इबाल पर खड़े होकर उन्हें उन श्रापों की पुकार करनी थी जो परमेश्वर की वाचा तोड़ने और आज्ञाओं के पालन न करने के कारण उन पर पड़ेंगे। सारी प्रजा जो घाटी में खड़ी रहकर कहेंगी, श्रापित है वो, और पूरी प्रजा जो घाटी में खड़ी थी कहेगी, आमीन आमीन। दूसरी ओर से आशीषों की पुकार होनी थी। ये आशीषें व्यवस्था विवरण में विहित है, जहां परमेश्वर ने उनके समक्ष वाचा और उस देश पर प्रभुता प्राप्त करने की शर्तें दी है। धन्य है वे जो यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हैं। इस प्रकार ये एक दार्शनिक दृश्य ही रहा होगा, क्योंकि 10 लाख से अधिक जनता उस घाटी में एकत्र थी और उनके प्रतिनिधि श्राप और आशीषों की घोषणा कर रहे थे। यही वो आधार या वाचा थी जिस पर वे उस देश को प्राप्त करने जा रहे थे जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इब्राहिम को दी थी। यहां परमेश्वर कह रहा है कि उन्होंने उस वाचा को तोड़ा है, अतः परमेश्वर अब उस देश पर उनकी प्रभुता स्थिर रखने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए वो कहता है, यरमिया अध्याय 11 पद 1 से लेकर 3 तक, यहोवा का ये वचन यरमिया के पास पहुंचा। इस वाचा के वचन सुनो और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो, उनसे कहो, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, श्रापित है वो मनुष्य जो इस वाचा के वचन ना माने। ये वही श्राप है जो इबाल पर्वत पर से घोषित किया गया था। परमेश्वर उनकी इस पुकार को दोहरा रहा था। यरमिया अध्याय 11 पद 4, जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकलने के समय ये कहकर बांधी थी, मेरी सुनो और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूं उन सबों का पालन करो, इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। ये एक शर्त थी कि यदि वे आज्ञाओं का पालन करेंगे और निभाएंगे तब परमेश्वर उन्हें इस देश में रहने देगा। प्रेरित पौलुस ने रोम की कलीसिया को लिखे अपने पत्र में यहूदियों की एक भूल का उल्लेख किया है। वो भूल ये थी कि उनके विचार में उनके पास व्यवस्था है, इसलिए उनके साथ सब ठीक है। उसने कहा, व्यवस्था रखना नहीं, इसका पालन करना महत्वपूर्ण है। व्यवस्था का होना अर्थहीन है। यदि व्यवस्था हो और उसका पालन न किया जाए तो दंड अधिक होता है। याकूब ने लिखा, याकूब अध्याय 1:22, वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। इसी भ्रम के कारण हम सोचते हैं कि हमने परमेश्वर की व्यवस्था को सुना है और हम परमेश्वर की व्यवस्था को जानते हैं। परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी हैं और हमारे आचरण के लिए बस यही बहुत है, परंतु ऐसा नहीं है। ज्ञान के साथ उत्तरदायित्व बढ़ता है। जितना अधिक ज्ञान परमेश्वर देता है उतना ही अधिक उत्तरदायित्व बढ़ता है। आज्ञाकारिता और सत्य को करने का उत्तरदायित्व। याकूब अध्याय 4:17, जो भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये पाप है। अतः परमेश्वर की व्यवस्था और उसकी वाचा का होना ही पर्याप्त नहीं, उसका पालन करना, उसकी आज्ञाकारिता तथा परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है उसे मानने पर विशेष बल दिया गया है। अब परमेश्वर कहता है, वो आज्ञा जो मैंने तुम्हारे पुरखों को दी थी जब मैंने कहा था, मेरी वाणी सुनो और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूं उन सभी आज्ञाओं का पालन करो, इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। यरमिया अध्याय 11:5, और जो शपथ मैंने तुम्हारे पितरों से खाई थी कि जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है उसे मैं तुमको दूंगा, उसे पूरी करूंगा और देखो वो पूरी हुई है। मैंने शपथ खाई थी कि उन्हें दूध और मधु बहता हुआ देश दूंगा, मैंने वो पूरी की। स्वयं देख लो, परमेश्वर कह रहा था कि उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। वो शपथ जो मैंने इब्राहिम से खाई थी कि मैं उसे और उसके वंशजों को ये देश दूंगा। परमेश्वर कहता है, मैंने वाचा का अपना उत्तरदायित्व पूरा किया है, परंतु इसराइल के वंशजों ने वाचा तोड़ दी। यरमिया अध्याय 11:5, ये सुनकर मैंने कहा, हे यहोवा ऐसा ही हो। इब्रानी में इसका अर्थ है, ऐसा ही हो यहोवा। यरमिया उसी पुकार के साथ सुर मिला रहा है जो शेकेम की घाटी में सुनाई पड़ी थी जब श्राप और आशीषों की पुकार की जा रही थी। वो उन्हीं लोगों की तरह प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा था। परमेश्वर कहता है, ऐसी स्थिति में ही मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम मेरी प्रजा होंगी। और यरमिया कहता है, हे यहोवा ऐसा ही हो। यरमिया अध्याय 11:6, तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये सब वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम के सड़कों में प्रचार करके कह, इस वाचा के वचन सुनो और उसके अनुसार चलो। अतः सुनना ही पर्याप्त नहीं है, उसका पालन भी करना चाहिए। यरमिया अध्याय 11:7-8, क्योंकि जिस समय से मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र देश से छुड़ा ले आया तब से आज के दिन तक उनको दृढ़ता से चिताता आया हूं, मेरी बात सुनो। परंतु उन्होंने ना सुनी और ना मेरी बातों पर कान लगाया, किंतु अपने अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे। इसलिए मैंने उनके विषय इस वाचा की सब बातों को पूर्ण किया है जिसके मानने की मैंने उन्हें आज्ञा दी थी और उन्होंने ना मानी। अतः परमेश्वर उनसे औपचारिक रूप में कह रहा है कि वाचा तोड़ने के परिणाम स्वरूप वे उन श्रापों के पड़ने की प्रतीक्षा करें जो पर्वत ईबाल पर से उच्चारित किए गए थे। अतः परमेश्वर की वाचा तोड़ने से उन पर ये श्राप आ पड़ेंगे। यदि आप व्यवस्था विवरण अध्याय 28 पढ़े, जिसका आरंभ अध्याय 27 पद 9 से है, जहां वो इस घटना का वर्णन करता है। ये गरेजिम पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाएंगे। तब पद 13 में एबाल पर खड़े होने वाले श्राप सुनाएंगे। इस प्रकार पद 15 में श्रापित है वो मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवाकर वा ढलवाकर निराले स्थान में स्थापित करे, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। यहोवा कहता है कि जितने उनके नगर हैं, उतनी ही मूर्तियां स्थापित करके उन्होंने वाचा तोड़ी है। उन्होंने यरूशलेम के प्रत्येक कोने में मूर्तियां स्थापित की हुई है। अतः श्राप का सर्वप्रथम कारण यहोवा ने कहा कि उनकी मूर्तियां थी जिनकी वे उपासना करते थे। इसी कारण सब श्राप आए। आप देखेंगे कि पद 16 से अंत तक प्रत्येक पद वाचा तोड़ने पर श्राप से आरंभ होता है, और वो उस वाचा का उल्लेख भी करता है। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 में परमेश्वर ने स्पष्ट कहा है कि श्राप क्या होंगे, और पद 16 में वो कहता है, श्रापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे, शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। यहोवा तुझको शाप देता और धमकी देता रहेगा आदि, वो महामारियां तुझ पर डालेगा। पद 22, परमेश्वर तुझको क्षय रोग से मारेगा। पद 25, यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा। पद 27, यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। जो भी था वो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। इस प्रकार वो उन सब विपत्तियों का उल्लेख करता है जिनका कारण वाचा का तोड़ा जाना है। अब यरमिया घोषणा करता है, तुमने ऐसा किया है, तुमने परमेश्वर की वाचा को तोड़ा है, इसलिए श्राप तुम पर पड़ेगा। उन्होंने आज्ञा नहीं मानी और नहीं सुना, वे अपने मन के बुरे विचारों पर चले थे, इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं उन पर अपनी वाचा के उन शब्दों को प्रकट करूंगा जो मैंने आज्ञा स्वरूप उन्हें दिए थे, परंतु उन्होंने उसका पालन नहीं किया। यरमिया अध्याय 11 पद 9 से लेकर 11 तक। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों में विद्रोह पाया गया है। जैसे इनका पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते थे, वैसे ही ये भी उनके अधर्मों का अनुसरण करके दूसरे देवताओं के पीछे चलते और उनकी उपासना करते हैं। इसराइल और यहूदा के घरानों ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया है। इसलिए यहोवा यूं कहता है, देख, मैं इन पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूं जिससे ये बच ना सकेंगे, और चाहे ये मेरी दोहाई दे तो भी मैं इनकी ना सुनूंगा। ये कैसे संकटकालीन स्थिति होती है कि मनुष्य इतना दूर निकल जाएगा कि परमेश्वर कहे, बहुत हुआ, अब यदि वे मुझे पुकारेंगे तो भी मैं नहीं सुनूंगा। वे बहुत दूर चले गए हैं, उन्होंने सीमा पार कर ली है और अब वे बहुत दूर हो गए हैं। अब यदि वे मुझे पुकारे तो भी मैं नहीं सुनूंगा। ये बहुत ही गंभीर बात है। हम देखते हैं कि परमेश्वर यरमिया से कह रहा है, उनके लिए अब मुझसे प्रार्थना मत करना, बहुत हुआ, मैं भुगत चुका, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। जैसे हमने आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन दिया है कि योशिय्याह एक भला राजा था जिसने 41 वर्ष राज्य किया था। उसने धार्मिक सुधार किए थे। वो मगिदोन की घाटी में फिरौन नीको के साथ युद्ध में मारा गया था। उसके बाद आहाज ने राजगद्दी पर अधिकार किया था। आहाज एक अत्यधिक दुष्ट राजा था। उसने बाल देवता और उन सब देवी देवताओं का पुनर्स्थापना किया जिनसे योशिय्याह ने यहूदा को शुद्ध किया था। हिजकिय्याह का पुत्र मनश्शे राजाओं में सबसे दुष्ट था। उसने ही उनके पूर्वजों की मूर्ति पूजा में अगुवाई की थी, परंतु योशिय्याह ने धर्म सुधार किया था। अब यहोआहाज उन्हें फिर से पुरखाओं के पाप में मगन कर देता है, या यूं कहे कि मनश्शे द्वारा लाए गए पापों में। यही कारण है कि परमेश्वर उनसे शिकायत करता है। इसराइल और यहूदा के घराने ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया है। ये संभवतः मनश्शे के युग में हुआ था। अतः परमेश्वर पद 12 में कहता है, यरमिया अध्याय 11 पद 12, उस समय यरूशलेम और यहूदा के नगरों के निवासी उन देवताओं की दुहाई देंगे। यदि वे मुझे पुकारेंगे तो भी मैं सुनूंगा नहीं, उन्हें सहायता के लिए उनके देवताओं के पास जाने दो। यरमिया अध्याय 11 पद 12 में आगे लिखा है, जिनके लिए वे धूप जलाते हैं परंतु वे उनकी विपत्ति के समय उनको कभी ना बचा सकेंगे। इन छोटे छोटे देवताओं की वे आराधना कर रहे थे, इनमें उनकी रक्षा करने की सामर्थ नहीं था, वे सुन भी नहीं सकते। आपको ध्यान होगा कि भजन संहिता और यशया में कितनी बार इन झूठे देवताओं की पूजा के विरुद्ध कहा गया है और मूर्ति पूजा का उल्लेख किया गया है। मनुष्य काठ से तरश कर एक छोटी सी मूर्ति बना दे और उसके शेष भाग से आग जलाकर रोटी पकाए, तदोपरांत लकड़ी से बनाई गई मूर्ति को वो कहे, ये मेरा परमेश्वर, जिस लकड़ी का एक भाग अग्नि में भस्म हो चुका है, ये कैसी मूर्खता है कि वो कहे ये लकड़ी परमेश्वर है और उसकी उपासना और आराधना करे। ये तो उसके हाथों की कारीगरी है, ये तो उसने स्वयं बनाया है। वो उसकी आंखें बनाता है जिसके लिए भजन का रचने वाला कहता है वे देख नहीं सकती। वो उसके कान बनाता है परंतु वो सुन नहीं सकता। वो उसके पैर बनाता है जिन पर वो चल नहीं सकता। ये कैसी मूर्खता है, आपका देवता न देख सकता है, न सुन सकता है, न चल सकता है। यही कारण है कि जब वे उन देवताओं को पुकारेंगे तब वे सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि वे सच्चे परमेश्वर नहीं है, वे सुन नहीं सकते। ये उस समय होगा जब विपत्ति आएगी, जब आप परमेश्वर को पुकारना चाहेंगे। ये कैसे दुर्भाग्य की बात है कि आप तब तक परमेश्वर से मुंह मोड़े रहे जब तक आप परेशानी में ना पड़ जाए और परमेश्वर को पुकारे, हे परमेश्वर, परमेश्वर मेरी सहायता कर। तब वो अपना सिर हिलाकर कहेगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर नहीं हूं, तुम मेरी आराधना तो कर नहीं रहे थे, तुम तो अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बिता रहे थे, तुम अपनी अभिलाषाओं के पीछे भाग रहे थे, तुम मेरी सेवा नहीं कर रहे थे, मुझे मत पुकारो, मैं तुम्हारा परमेश्वर नहीं हूं, मुझे परमेश्वर मत कहो, मैं तो तुम्हारा परमेश्वर था ही नहीं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। परमेश्वर ने कहा ऐसा ही होगा, वे मुझे पुकारेंगे परंतु मैं कहूंगा मैं तुम्हारा परमेश्वर नहीं हूं, तुम अपने उन देवताओं को पुकारो जिनकी तुमने आराधना की। मैं तो तुम्हारी पुकार नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हें उत्तर नहीं दूंगा। परमेश्वर ने कहा, यरमिया अध्याय 11 पद 13, हे यहूदा, जितने तेरे नगर हैं उतने ही तेरे देवता भी हैं, और यरूशलेम के निवासियों ने हरेक सड़क में उस लज्जापूर्ण बाल की वेदियां बना बनाकर उसके लिए धूप जलाया है। क्या ये लज्जा की बात नहीं है? ये परमेश्वर का नगर है, महिमामय यरूशलेम, जिसके प्रत्येक कोने में बाल की वेदी है जिस पर धूप जल रही है। यरमिया अध्याय 11 पद 14, परमेश्वर कहता है, इसलिए तू मेरी प्रजा के लिए प्रार्थना ना करना। यरमिया, इनके लिए मुझसे बिल्कुल प्रार्थना नहीं करना। यरमिया अध्याय 11 पद 14 में आगे लिखा है, ना कोई इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से विनती करे, क्योंकि जिस समय ये अपनी विपत्ति के मारे मेरी दुहाई देंगे तब मैं उनकी ना सुनूंगा। यरमिया से परमेश्वर कह रहा है कि उनके लिए वो अब कभी प्रार्थना ना करे, अर्थात जब परमेश्वर कहे उनके लिए प्रार्थना ना करना तो निश्चय है कि नाश होगा। एक जगह परमेश्वर ने ये भी कहा है, उनके भले की प्रार्थना ना करना, यदि तू करेगा तो भी मैं ना सुनूंगा। कैसा दुर्भाग्य जब परमेश्वर किसी के लिए ये कहे, बहुत हुआ, उनके लिए आप प्रार्थना मत करो, वे बहुत दूर जा चुके हैं। अब आप कहेंगे, क्या ये संभव है कि मनुष्य इतना दूर चला जाए? धर्मशास्त्र तो कहता है कि ये संभव है। परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति अध्याय 6 पद 3, मेरा आत्मा मनुष्य के साथ सदा लो विवाद करता ना रहेगा। मनुष्य मसीह यीशु का त्याग करते इतना दूर चला जाता है कि परमेश्वर अंत में कह देता है, बहुत हुआ, तुम ऐसा जीवन बिताना चाहते हो, तुम ऐसा आचरण रखना चाहते हो, तो वैसा ही करो। मुझे कभी नहीं पुकारना, क्योंकि यदि तुम मुझे पुकारोगे भी तो मैं नहीं सुनूंगा। यूहन्ना ने कहा है, यूहन्ना अध्याय 12 पद 39, इस कारण वे विश्वास ना कर सके। इस प्रकार इस्राएल उस सीमा को पार कर चुका था जहां से लौटना नहीं होता है। यरमिया अध्याय 11 पद 15 से लेकर 18 तक, परमेश्वर ने कहा, मेरी प्रिया को मेरे घर में क्या काम है? उसने तो बहुतों के साथ कुकर्म किया और तेरी पवित्रता पूरी रीति से जाती रही है। जब तू बुराई करती है तब प्रसन्न होती है। यहोवा ने तुझको हरी, मनोहर, सुंदर, फल वाली जैतून तो कहा था, परंतु उसने बड़े हुल्लड़ के शब्द होते ही उसमें आग लगाई गई और उसकी डालियां तोड़ डाली गई। सेनाओं का यहोवा जिसने तुझे लगाया, उसने तुझ पर विपत्ति डालने के लिए कहा है। इसका कारण इसराइल और यहूदा के घरानों की ये बुराई है कि उन्होंने मुझे रिस दिलाने के लिए बाल के निमित्त धूप जलाया। यहोवा ने मुझे बताया और ये बात मुझे मालूम हो गई, क्योंकि यहोवा ही ने उनकी युक्तियां मुझ पर प्रकट की। यही वो संदेश है जो यरमिया को उन लोगों तक पहुंचाना था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्हें यह संदेश अच्छा नहीं लगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने उसे घात करने की इच्छा की। उनके लिए यह बहुत कठोर वचन था। अतः पद 19 में यरमिया अपने विषय कहता है कि वो कैसी परेशानी में आ पड़ा है। यरमिया अध्याय 11 पद 19, मैं तो वध होने वाले भेड़ के बच्चे के समान अनजान था। मैं न जानता था कि वे लोग मेरी हानि की युक्तियां ये कहकर करते हैं, आओ हम फल समेत इस वृक्ष को उखाड़ दें और जीवितों के बीच में से काट डालें, तब इसका नाम तक फिर स्मरण ना रहे। कुछ लोग थे जो उसकी जान लेना चाहते थे। यरमिया अध्याय 11 पद 20। परंतु अब हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मी न्यायी, हे अंतकरण की बातों के ज्ञाता, वे अपना जीवन अपनी इच्छा से व्यतीत करना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर मन की बातों को जानता है। यरमिया अध्याय 11 पद 20 में आगे लिखा है, तू उनका पलटा ले और मुझे दिखा। ये यरमिया की प्रार्थना है, हे परमेश्वर तू उनका पलटा ले और मुझे दिखा। वे मुझे मार डालने का षड्यंत्र रचते हैं, अब मैं तेरा बदला लेना देखूंगा। यरमिया अध्याय 11 पद 20 के अंत में लिखा है, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे हाथ में छोड़ दिया है। आज मसीह समाज में भी कुछ ऐसी भावना होती है, चाहे वो सत ही हो, परंतु हे मेरे भाइयों और बहनों, हमें सबसे प्रेम रखना है, चाहे वो दुष्ट ही क्यों ना हो। हमें पलटा लेने के विचारों को मन में नहीं लाना चाहिए। हमें तो ऐसी प्रार्थना भी नहीं करनी चाहिए, परमेश्वर दुष्ट को नाश करे, परंतु हमारे स्वभाव में दुष्टता और पाप के विरुद्ध हमारी एक दुर्बलता है। हमें क्षमाशील होना चाहिए। जी हां, हमें क्षमाशील होना आवश्यक है। जी हां, हमें प्रेम करना है। मैं इसका खंडन नहीं करता और ना ही यहां कह रहा हूं, परंतु ऐसा समय भी आता है जब हमें परमेश्वर के उचित न्याय के लिए याचना करना होती है। मेरे विचार में आज हमारे नैतिक पतन का कारण यही है कि हमने बुराई के प्रति और दुराचार के प्रति सहनशील और नम्र स्वभाव अपना रखा है। मैं तो सोचता हूं कि ये बहुत खतरनाक कारक स्वभाव है। इसी कारण यरमिया कहता है, तू उनका पलटा ले और मुझे दिखा, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे हाथ में छोड़ दिया है। प्रभु मुझे देखने दे, तू कैसे उनका विनाश करता है। यरमिया अध्याय 11 पद 21। इसलिए यहोवा ने मुझसे कहा, परमेश्वर यरमिया को उत्तर देता है। यरमिया अध्याय 11 पद 21 में आगे लिखा है, अनातोत के लोग जो तेरे प्राण के खोजी है और ये कहते हैं कि तू यहोवा का नाम लेकर भविष्यवाणी ना कर, नहीं तो हमारे हाथों से मरेगा। वे यरमिया से कहने लगे, परमेश्वर के नाम में भविष्यवाणी बंद कर, नहीं तो हम तुझे जान से मार देंगे। यरमिया अध्याय 11 पद 22 और 23। इसलिए सेनाओं का यहोवा उनके विषय यूं कहता है, मैं उनको दंड दूंगा, उनके जवान तलवार से, और उनके लड़के लड़कियां भूखा मरेंगे, और उनमें से कोई भी ना बचेगा। मैं अनातोत के लोगों पर ये विपत्ति डालूंगा, उनके दंड का दिन आने वाला है। परमेश्वर ये प्रतिज्ञा करता है कि वो इन लोगों को जो यरमिया को घात करना चाहते हैं अवश्य दंड देगा।